नमस्कार भारत 11 दिसंबर दिन सोमवार सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा यरूशलम ही इसराइल की राजधानी। फलस्तीनी जितनी जल्दी इस बात को समझेंगे उतनी जल्दी शांति की ओर बढ़ सकेंगे। नेपाल हुआ लाल, संसदीय चुनाव में वाम गठबंधन जीत की राह पर।
जो वाम गठबंधन है एमाले और माओवादी केंद्र का, कंफर्टेबल मेजोरिटी की तरफ ये आगे बढ़ रहे हैं। अगर सरकार बन जाती है वाम गठबंधन का तो केपी ओली का प्रधानमंत्री बनना निश्चित है।
और सुनिए,
ये मोदी साहब क्या सोचते हैं अपने आप को, क्या समझते हैं? वो सोचते हैं को हिंदुस्तान पूरी पेट्रियटिज्म उनके मुट्ठी में है क्या?
खबरें होंगे विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी राज से। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन के यरूशलम को इसराइल की राजधानी के रूप में मानने के फैसले का बुरा असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इससे इलाके में इसराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति बहाल करने की कोशिशों को धक्का लगेगा। नेपाल में इसी महीने हुए संसदीय चुनावों की मतगणना शुरू हो गई है। चुनावी नतीजों में वामपंथी गठबंधन बहुमत की ओर बढ़ रहा है। नेपाल में राजशाही के अंत और गृह युद्ध खत्म होने के बाद पहली संघीय संसद की 275 सीटों के लिए आम चुनाव हुए हैं। अब तक आए नतीजों में वाम मोर्चा ने 82 सीटें अपने नाम कर ली हैं, जबकि सत्ताधारी नेपाली कांग्रेस ने अभी तक महज 13 सीटें ही जीती हैं। परमाणु हथियार निरस्त्रीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान आईकैन को वर्ष 2017 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। ओस्लो में पुरस्कार ग्रहण समारोह में अभियान की प्रमुख बीट्रिस फिन ने अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच जारी तनाव की ओर इशारा करते हुए कहा जल्दबाजी में लिया गया एक फैसला लाखों लोगों की मौत का कारण बन सकता है। पुरस्कार ग्रहण समारोह में हिरोशिमा बम हमला देख चुकी 85 साल की सेत्सुको थुरलो भी मौजूद थी जो इस अभियान से जुड़ी हैं। बीट्रिस फिन ने इस मौके पर अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच जारी तनाव की ओर इशारा करते हुए कहा
A moment of panic or carelessness, a misconstrued comment.
एक पल का डर या लापरवाही या किसी भी बयान को गलत तरह से समझने या व्यक्ति के ईगो पर ठेस लगने भर से हमारी दुनिया के कई खूबसूरत शहर पूरी तरह तबाह हो सकते हैं। अगर सेना ने जानबूझकर इन हथियारों का इस्तेमाल किया तो लाखों लोगों की हत्या हो सकती है। ये थी आईकैन की प्रमुख बीट्रिस फिन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। कैलिफोर्निया के उत्तर में लॉस एंजिल्स में कई जगहों पर जंगलों में लगी भीषण आग अभी भी बेकाबू है। जंगल में लगी इस आग को बुझाने के काम में 4,000 अग्निशामक कार्यकर्ताओं को लगाया गया है। आग अब तटीय शहर सांता बारबरा की तरफ बढ़ रही है। आग के कारण सैकड़ों इमारतें मलबे में तब्दील हो गई हैं और सैकड़ों क्षतिग्रस्त हुई हैं। इलाके से करीब 2,00,000 लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। सांता बारबरा काउंटी अग्निशमन विभाग के कैप्टन टेव सेनिबुनी कहते हैं मैंने अग्निशमन अधिकारियों से बात की है। वो कहते हैं कि ये अब तक का उनका सबसे मुश्किल और सबसे थकाने वाला अभियान है क्योंकि आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही। दिन पर दिन ये बढ़ती ही जा रही है। सांता बारबरा काउंटी अग्निशमन विभाग के कैप्टन डेव जेनिबुनी के शब्द। कीनिया में विपक्ष ने कहा है कि उन्होंने अपने नेता राइला ओडिंगा के वैकल्पिक राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने के समारोह को फिलहाल के लिए रोक दिया है। आगामी मंगलवार को एक रैली में यह समारोह आयोजित किया जाना था। विपक्ष ने शपथ ग्रहण के लिए नई तारीखों की घोषणा नहीं की है। इसी साल अगस्त में हुए राष्ट्रपति चुनावों के रद्द होने के बाद देश में दोबारा चुनाव कराए गए थे, लेकिन राइला ओडिंगा ने इसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। इन चुनावों में मौजूदा राष्ट्रपति उहुरु केन्याटा ने 98% वोटों के साथ जीत दर्ज की थी। अफ्रीकी देश कांगो गणराज्य की संसद ने खनन से संबंधित एक नई नीति को पारित कर दिया है जिसके तहत सरकार को मिलने वाले टैक्स और रॉयल्टी में इजाफा होगा। 2 साल पहले इन बदलावों का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन खनन कंपनियों के विरोध के कारण इस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि जनवरी 2016 से लेकर इस साल के अक्टूबर तक सोमालिया में संघर्ष में 4,500 से अधिक आम नागरिक मारे गए हैं या घायल हुए हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा। नमस्कार भारत सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से ये कहा है कि यरूशलम इसराइल की राजधानी है, विवाद और तनाव दोनों बढ़ता जा रहा है। एक ओर संयुक्त राष्ट्र महासचिव इस पर चिंता जता रहे हैं और दूसरी ओर इसराइल ये कह रहा है कि फलस्तीनियों को मौजूदा वास्तविकताओं को मंजूर कर लेना चाहिए। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए मानसी दास से।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेश ने न्यूज़ चैनल CNN से बातचीत के दौरान कहा है कि यरूशलम को इसराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता देने के ट्रंप प्रशासन के फैसले से इसराइल और फिलिस्तीनियों के बीच शांति बहाली के प्रयास खटाई में पड़ सकते हैं। इससे पहले यरूशलम के मुद्दे पर फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने अमरीकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस से मिलने से मना कर दिया। माइक पेंस के एक प्रवक्ता ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। दूसरी ओर इसराइली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में बढ़ने के लिए फिलिस्तीनियों को यरूशलम को इसराइल की राजधानी स्वीकार करने की जरूरत है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात के बाद बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा, इसराइल की राजधानी यरूशलम नहीं है तो और क्या है? हमारी संसद और राष्ट्रपति भवन यरूशलम में नहीं है तो और कहाँ है? यरूशलम हमेशा से हमारी राजधानी रही है, ये किसी और की राजधानी नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि फिलिस्तीनी इस वास्तविकता को जितनी जल्दी समझ लेंगे उतनी ही जल्दी हम शांति की ओर बढ़ सकेंगे। इसराइली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू का ये बयान ऐसे वक्त आया है जब यरूशलम को इसराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता देने के राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले के विरोध में अरब जगत में मुसलमानों का विरोध जारी है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पेरिस में इसराइली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से मुलाकात के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इसराइल को फिलिस्तीनियों से बातचीत के लिए सार्थक संदेश भेजने की जरूरत है।
Ma conviction, c'est que la seule façon de sortir de la situation dans laquelle nous sommes plongés depuis des décennies.
France के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों कह रहे थे कि दशकों से जारी इन हालात को बदलने के लिए सिर्फ एक रास्ता है और वो रास्ता शांति का रास्ता है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू की इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि हम इसराइल और फिलिस्तीनियों के नेताओं के हाथ में हैं। यरूशलम शहर फिलिस्तीनियों और इसराइल के बीच विवाद का केंद्र बिंदु है। यहाँ की स्थिति में मामूली बदलाव भी कई बार हिंसक तनाव में बदल जाता है। इस प्राचीन शहर में यहूदी, ईसाई और मुस्लिम धर्म के सबसे पवित्र स्थल हैं। ये शहर सिर्फ धार्मिक रूप से ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि कूटनीतिक और राजनीतिक रूप से भी बेहद अहम है। अधिकतर इसराइली यरूशलम को अपनी अविभाजित राजधानी मानते हैं। वर्ष 1948 में इसराइल बनने के बाद यरूशलम शहर के पश्चिमी हिस्से में संसद भवन बनाया गया था। इसके बाद साल 1967 के युद्ध में इसराइल ने पूर्वी यरूशलम पर भी कब्जा कर लिया था लेकिन इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली। पूर्वी यरूशलम का है जो पूर्वी यरूशलम को अपनी राजधानी मानते हैं। इसराइल फिलिस्तीनी विवाद में यही शांति बहाली का अंतर्राष्ट्रीय फॉर्मूला भी है जिसे टू नेशन थ्योरी या दो राष्ट्र समाधान भी कहा जाता है। लेकिन इसराइल साल 1967 के युद्ध में हासिल पूर्वी यरूशलम का हिस्सा छोड़ने पर राजी नहीं है।
बेन्यामिन नेतन्याहू ने जोर देकर कहा, यरूशलम ही इसराइल की राजधानी। ब्यौरा सुना अपने मानसी दास की जुबानी। और अब बात नेपाल की। नेपाल में चुनाव के बाद मतगणना के नतीजे बता रहे हैं कि सत्ताधारी नेपाली कांग्रेस के हाथ से सत्ता फिसल गई है। वाम मोर्चा ने नेपाली कांग्रेस पर निर्णायक बढ़त बना ली है। माना जा रहा है कि केपी ओली दोबारा नेपाल के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इस घटनाक्रम पर और जानकारी के लिए मेरे सहयोगी मोहम्मद शाहिद ने काठमांडू में बीबीसी संवाददाता महेश आचार्य से बात की।
दो साल पहले जो संविधान जारी हुआ था उसके अंतर्गत पहली बार नवंबर 26 और दिसंबर 7 में नेपाल में जनरल इलेक्शन और ये प्रादेशिक प्रोविंशियल इलेक्शन हुआ है और उसकी काउंटिंग जारी है। अब उस काउंटिंग के अब तक के अगर आप रुझान देखें या विजयी सीट को देखें तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले सबसे आगे है। उसके साथ जो गठबंधन में रही माओवादी केंद्र है, ये दोनों दल मिलकर वाम गठबंधन बनाए थे, लेफ्ट अलायंस बनाए थे, तो एमाले का 59 सीट्स है उसमें उसने जीत हासिल की है और माओवादी केंद्र ने 23 सीटों में जीत हासिल की है। तो सबसे पुरानी पार्टी जो है अभी की जो सत्तारूढ़ घटक है नेपाली कांग्रेस उसकी केवल 13 सीट है। से देखा जा रहा है कि जो वाम गठबंधन है एमाले और माओवादी केंद्र का, तो एक एक कंफर्टेबल मेजोरिटी की तरफ ये आगे बढ़ रहे हैं।
महेश जी, पूरे परिणाम आने में अभी कितना समय लगेगा?
अभी तक 1-7 सीटों की नतीजा आया है, जिसमें एमाले आगे है और दूसरे नंबर में माओवादी केंद्र है और तीसरे नंबर में नेपाली कांग्रेस है। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने कहा है कि ये जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है उसके अंतर्गत के जो काउंटिंग हो रहे हैं और उसका रिजल्ट तो कल तक आ जाएगा, और जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का रिजल्ट है वो इस हफ्ते की अंत तक आ जाएगा।
हमेशा देखा गया है कि नेपाल में कभी कभी कोई सरकार आती है फिर जाती है, एक अस्थिरता रहता है नेपाल में, क्या इससे कुछ बदलाव आने के संकेत दिख रहा है?
अपेक्षा जता जा रही है कि इसके बाद एक स्थिर सरकार बन जाएगी, लेकिन आशंका भी ये है कि अगर जो गठबंधन बनाकर जो चुनाव में उतरे दो दल है, अगर इनके बीच एकीकरण नहीं होगा या वो दोनों मिलकर अगर सरकार नहीं बनाते तो फिर स्थिर सरकार की बात नहीं होगी। लेकिन ये जो गठबंधनकारी दल है इन्होंने चुनाव के पहले और अभी भी ये कह रहे हैं कि हम मिलकर ही सरकार चलाएंगे, पार्टी भी एकीकरण करेंगे और 5 साल तक एक स्थिर सरकार भी देंगे।
दोनों बड़े दिग्गज नेताओं का गठबंधन है, केपी ओली और प्रचंड का, तो फिर प्रधानमंत्री का दावेदार आप किसे देख पाते हैं?
दोनों पार्टियों ने औपचारिक रूप से बात तो नहीं की है, लेकिन कुछ दिन पहले प्रचंड ने कहा था कि अब के प्रधानमंत्री केपी ओली ही है, ऐसा कहा था उन्होंने। तो मुझे लगता है कि अब अगर सरकार बन जाती है वाम गठबंधन का तो केपी ओली का प्रधानमंत्री बनना निश्चित है।
नेपाल के संसदीय चुनाव में वाम गठबंधन जीत की राह पर जानकारी दे रहे थे काठमांडू से बीबीसी संवाददाता महेश आचार्य। गुजरात की राजनीति में कल का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस सनसनीखेज आरोप के नाम रहा जिसमें उन्होंने कांग्रेस और पाकिस्तान के पूर्व अधिकारियों के बीच मिलीभगत के आरोप लगाए। रविवार को बनासकांठा के पालनपुर की एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस से निष्कासित मणिशंकर अय्यर के घर कुछ ही दिन पहले एक गुप्त बैठक हुई थी जिसमें पाकिस्तान के उच्चायुक्त, पूर्व विदेश मंत्री, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के एक पूर्व अधिकारी चाहते हैं कि कांग्रेस नेता अहमद पटेल गुजरात के अगले मुख्यमंत्री बने। बीबीसी संवाददाता कुलदीप मिश्र ने वरिष्ठ पत्रकार प्रेम शंकर झा से बात की जिनका दावा है कि वो मणिशंकर अय्यर के घर पर हुई उस बैठक में शामिल थे, और उनका यह भी दावा है कि इस बैठक में गुजरात या अहमद पटेल का जिक्र तक नहीं हुआ।
ये बैठक 6 तारीख को हुई थी और करीब 3 घंटे चली होगी, वो हम लोग पहले वो खाने से पहले मिले, एक डेढ़ घंटे बात किए। कस्तूरी साहब और काम पे हिंदुस्तान आए हुए थे, तो वो मणिशंकर अय्यर के पुराने मित्र है यूनिवर्सिटी से, और दोनों सूझ एक ही है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में मित्रता होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। और कस्तूरी साहब फॉरेन मिनिस्टर रह चुके थे जैसे आप जानते हैं, और उन्होंने उसको बहुत, वो बिल्कुल मास्टर माइंड थे मुशर्रफ के टाइम। अच्छा, अब वो पहुंचे थोड़े देरी से और हम लोग उसके बाद करीब घंटे भर खाने के पहले बात किए, घंटे डेढ़ घंटे, उसके बाद घंटे भर खाने के ऊपर खाने के साथ बात की अलग अलग लोगों के साथ।
जी जी, इस तो किस विषय पे बातचीत हुई थी? मतलब ये तो आप कह रहे हैं कि वो चाहते थे
हिंदुस्तान पाकिस्तान रिलेशंस पे, और इसमें असल में बातचीत की कि हमें इसको सुधार कैसे सकते हैं, अब किस हद तक कश्मीर का प्रॉब्लम मसला सबसे बड़ा माने रोड ब्लॉक है, और किस हद तक और भी चीजें हो सकती हैं, कर सकते हैं।
क्या इस बैठक में कहीं से भी गुजरात चुनावों का जिक्र हुआ था?
बिल्कुल जिक्र हुआ ही नहीं था, कभी गुजरात का नाम भी नहीं आया था।
अच्छा सर, आपको अगर आप बता सकें कि आपको किसने उस बैठक में बुलाया था और क्या मकसद था?
मणिशंकर अय्यर साहब ने बुलाया था। मैं कश्मीर से 29 साल से लिख रहा हूँ और मैंने कई प्रधानमंत्रियों के साथ इसके बारे में गुफ्तगू की है, मैं एक तरीके से इन्वॉल्व भी रहा हूँ। पहले तो मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का मैं सूचना सलाहकार था, और उस वक्त मैं सीक्रेटली गया था कश्मीर, उनको मैंने रिपोर्ट किया था उसपे, और तो उसलिए उन्होंने मुझे बुलाया था। और ये भी जानते, मणिशंकर साहब को मैं बचपन से जानता हूँ, स्कूल में साथ साथ थे।
अच्छा, तो प्रधानमंत्री ने इनके अलावा जिन लोगों के नाम उसमें लिए हैं, मनमोहन सिंह साहब की बात कही है, क्या ये लोग भी मौजूद थे? उनके अलावा और कौन लोग, आपने कहा कि कई लोगों?
हाँ, वो हामिद अंसारी साहब,
हामिद अंसारी साहब थे जी,
और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। तो इसका क्या मतलब है कि हम लोग सब माने क्रिएटर्स हैं क्या? ये मोदी साहब क्या सोचते हैं अपने आप को, क्या समझते हैं?
वो सोचते हैं को हिंदुस्तान पूरी क्या कहते हैं पेट्रियटिज्म उनके मुट्ठी में है क्या, हम लोग क्या इस मुल्क के वाले बारे फिक्र नहीं कर सकते हैं क्या? ये लोग हैं जो 10-10, 20-20 साल, 30-30 साल काम किए हैं, सब हमें ट्रेटर्स बना रहे हैं क्योंकि हम साथ साथ थे, हम पाकिस्तानी के साथ बात करने को तैयार हैं।
सर प्रधानमंत्री ने एक और चीज कही कि रफीक साहब ये चाहते हैं कि गुजरात के अगले मुख्यमंत्री अहमद पटेल हों।
अहमद पटेल का नाम भी नहीं आया था शुरू में, ना आखिरी में, ना बीच में। ये गुजरात पे तो ध्यान दे भी नहीं आया था हमारे, ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। और झूठ बोलने से आप चुनाव नहीं जीतेगा, उनके जहन में उनके दिमाग में हार तो शब्द है नहीं, और वो कुछ भी किसी भी चीज को फोड़ने को तैयार है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए।
सर एक सवाल और कि प्रधानमंत्री ने कहा कि MEA को सूचित करना क्यों नहीं उचित समझा, अगर पाकिस्तान के कुछ पूर्व अधिकारियों से मिल भी रहे थे तो MEA को इसकी जानकारी देने में क्या समस्या थी?
क्योंकि इसमें कोई काम नहीं था। कसूरी साहब मणिशंकर के बहुत पुराने कॉलेज के मित्र हैं और वो किसी ऑफिशियल पोजीशन में नहीं है, ना तो मणिशंकर किसी ऑफिशियल पोजीशन में है। हम लोग प्राइवेट सिटीजंस ऑफ इंडिया है, हमारा हक है किसी से भी मिलना। कोई मुझे ये नहीं कह सकता है कि मैं पाकिस्तानी से नहीं मिलूं। अगर मैं जाके लंदन में किसी से मिलूं तो मुझे आप यहाँ पर गिरफ्तार करके जेल में डालेंगे क्योंकि हम सिर्फ उनसे मिले हैं। मिलना क्या? ये महमूद कसूरी यहाँ कुछ और काम पे भी आए हैं, और जगह वो भाषण दे रहे हैं, वो कसौली लिटरेरी फेस्टिवल में भी आए थे जबकि उनकी किताब निकली थी 2 साल पहले। तो वो आते जाते रहते हैं, उनको हमारी गवर्नमेंट वीजा देती है, अगर वो नहीं चाहते उनको तो वीजा ना दीजिए।
कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के घर पर हुई कथित गुप्त बैठक के बारे में और जानकारी और दावे कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार प्रेम शंकर झा। और आइए एक नज़र दिल्ली से छपने वाले अखबारों की सुर्खियों पर। मानसी दास तैयार हैं, कई अखबार उनके हाथ में हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी का विवादित बयान पहले अखबारों के पहले पन्ने पर सुर्खियाँ बना है आज।
हर अखबार का पहला पन्ना, उसमें पहली या दूसरी खबर, अब आज जो है वो यही खबर है। इसमें इस खबर को प्रमुखता से जगह दी गई है। जनसत्ता के अनुसार मोदी का आरोप है कि नेता मणिशंकर अय्यर ने कांग्रेस के आला नेताओं के पाकिस्तानी नेताओं से मिलने के एक दिन बाद उन्हें कथित तौर पर नीच कहा था। अब आपको दी स्टेट्समैन में छपी एक खबर बता दूं जिसके अनुसार राहुल गांधी 16 दिसंबर को पार्टी के अध्यक्ष के पद की कमान संभाल सकते हैं। अखबार का कहना है कि वो अपनी मां सोनिया गांधी के हाथों पार्टी की कमान लेंगे और उनके सामने अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस को उसकी पुरानी ख्याति लौटा सके। दी हिंदू अखबार देखूं तो मोदी की जो खबर है उसके बगल में एक खबर है मायावती की। BSP सुप्रीमो ने कहा है संघ परिवार से कि दलितों और पिछड़े वर्गों पर अत्याचार रोकिए। उन्होंने रविवार को कहा कि यदि दलितों को परेशान करना बंद नहीं किया गया तो वो हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लेंगी। और अब जब आप सुन ही रहे होंगे कि अस्पतालों का मामला इधर बड़ा गर्म है, गुरुग्राम में फोर्टिस अस्पताल और दिल्ली का मैक्स अस्पताल, अब एक और खबर आई है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायगढ़ के JMJ मिशन अस्पताल से। कहा गया है, ये खबर है नई दुनिया में, और कहा गया है कि अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाया है कि 80,000 रुपये के लिए उन्होंने एक नवजात शिशु को वेंटिलेटर से हटा दिया जिसके बाद शिशु की मौत हो गई। ये मामला हुआ है कोतरा में रहने वाले अरुण सोनी की पत्नी के साथ जिन्होंने 1.5 महीने पहले एक प्रीमेच्योर बेबी को जन्म दिया था और उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। और इधर अमर उजाला में छपी एक खबर के अनुसार दिल्ली एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीत चुके बॉक्सर कौर सिंह को आज से 35 साल पहले पंजाब सरकार ने इस उपलब्धि के लिए 1,00,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की थी, लेकिन ये रकम जो है उनको आज तक नहीं मिली। अब कौर सिंह इस रकम की जो राशि है उसको पाने के लिए गुहार लगा रहे हैं क्योंकि उनके पास अपना इलाज कराने का पैसा नहीं है। अखबार कहता है कि कौर सिंह मोहाली के एक अस्पताल में भर्ती हैं और दिल की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। कौर सिंह बॉक्सर मोहम्मद अली के साथ भी लड़ चुके हैं और फिलहाल आड़तियों से ब्याज पर पैसा लेकर अपना इलाज करवा रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी है पहले पन्ने पर सबसे ऊपर, इसमें लिखा है कि जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती अपने भाई तसद्दुक हुसैन मुफ्ती को कैबिनेट में जगह देने वाली हैं। अखबार कहता है कि इससे उनकी जो है पार्टी पर उनकी पकड़ और मजबूत हो जाएगी। हिंदुस्तान टाइम्स में एक खबर छपी है कि दिल्ली सरकार जल्द ही विक्रेताओं को कम दर पर लोन मुहैया कराएगी। ये लोन कुछ 20,000 रुपए का होगा ताकि ये विक्रेता अधिक दर पर लोन लेकर खुद को और मुसीबत में ना डालें। अखबार ने समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के हवाले से लिखा कि इसमें से 10,000 रुपये सब्सिडी होगा और जो बाकी की रकम है वो उस पर 6% का ब्याज देना होगा।
बहुत शुक्रिया मानसी दास समाचार पत्रों की सुर्खियां विस्तार से बताने के लिए। श्रोताओं, कभी आपने सोचा है कि हल्द्वानी, हैदराबाद, नागपुर, नैनीताल, दिल्ली, देहरादून, अलवर, इलाहाबाद, इनमें से किसी भी जगह या इस जगह के नाम को हटाकर उस जगह का नाम आप रख लीजिए जहां आप रहते हैं, हम रहते हैं, जगह का नाम बदल लीजिए, फिर सोचिए कि हमारे आसपास ऐसी न जाने कितनी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम सुनकर देखकर अनसुना अनदेखा कर देते हैं और इसी तरह दिन महीने साल गुजर जाते हैं। कराची से वस्तुल्ला खान की ये डायरी आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी।
सुना है कभी इंसान की भी दुम हुआ करती थी, लेकिन जब उसे इस्तेमाल नहीं किया गया तो झड़ गई। यही भाषा के साथ भी होता है, जो शब्द हम इस्तेमाल नहीं करते वो दिमाग से झड़ते चले जाते हैं, जैसे किंतु, परंतु, यदि, मानिका, आश्कार, शिराजा बंदी वगैरह अब कहाँ सुनने को मिलते हैं। कुछ जुमले ऐसे भी हैं जो हम सुबह शाम बिना मतलब इस्तेमाल करते हैं। आप भले सोते हुए भिखारी को जगा के पूछें क्या हाल है, कहेगा भगवान की बड़ी कृपा है, चेहरा तकलीफ से चुरमुरा रहा होगा, मगर बीमार से पूछें मियाँ तबीयत कैसी है, फट से बोलेगा अल्लाह का बहुत शुक्र है, हालांकि इन जुमलों का मतलब बहुत पहले दफन हो चुका है। राजस्थान के शंभूलाल के हाथों मोहम्मद फराजल के कत्ल और फिर लाश जलाने के वाक़े से पूरा भारत हिल गया। मर्दान यूनिवर्सिटी में तौहीन रिसालत के शुबे में मिशाल खान के कत्ल से पाकिस्तान में हलचल मच गई। मुंबई हमलों के बाद देश सकते में आ गया। आर्मी पब्लिक स्कूल पिशावर में तालिबान के हाथों पढ़ने वाले बच्चों के नरसंहार के बाद पाकिस्तान दहल के रह गया। दिल्ली में एक लड़की के चलती बस में रेप की खबर ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक दुख की लहर दौड़ा दी। गौरी लंकेश के कत्ल ने जमीन हिला दी। राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से यरूशलम को इसराइल की राजधानी मानने के ऐलान से दुनिया बेचैन हो गई। दंगल फिल्म की गीता को विमान में हिरासा करने के वाक़े और एयरलाइन के व्यवहार पे हर तरफ से कड़ी आलोचना और गीता से हमदर्दी के हजारों ट्वीट। ये मानने में आखिर अब क्या बाधा है कि हम करोड़ों अरबों में होते हुए भी अपनी ज़ात और नज़रिए के बड़े से पिंजरे में मुर्गियों की तरह बंद चंद कसाईयों की कृपा और दृष्टि के इंतज़ार में है। जब भी कसाई पिंजरे में हाथ डालता है तो मुर्गियाँ कड़क कड़क कौकां करते हुए एक दूसरे पे चढ़ जाती हैं और हर बार शुक्र अदा करती हैं कि चलो इस बार मैं बच गई, मगर शाम तक पिंजरा तब भी खाली हो जाता है और अगली सुबह फिर मुर्गियों से भर जाता है। कहते रहिए हर नई घटना के बाद दिल दहल गया, जमीन हिल गई, सकते में आ गए, बिजली दौड़ गई, निंदा हो गई, हलचल मच गई। मर जाइएगा मगर कभी अपनी चोंच, सींग और खुर से काम मत लीजिएगा, मैले हो जाएंगे।
पाकिस्तान से वस्तुल्ला खान की डायरी। और अब साप्ताहिक अंक खेल खिलाड़ी।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। कल धर्मशाला में खेले गए पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने भारत को 7 विकेट से हराया। इससे ठीक एक दिन पहले भारत के चीफ कोच रवि शास्त्री ने एक कमेंट लिखा था, धर्मशाला में आराम से सांस लो। इस धमाकेदार जीत से वाकई श्रीलंका ने आराम की सांस ली है। दिल्ली में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में सिर पर मंडराती हार को ड्रॉ में बदलकर बुलंद हौसलों से मैदान में खेलने उतरी श्रीलंका ने कल धर्मशाला में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और उसके बाद भारत का पुलिंदा 38.2 ओवर में ही केवल 112 रन पर बांध दिया। केवल 3 बल्लेबाज 2 अंकों तक पहुंचे। वो तो भला हो महेंद्र सिंह धोनी का जिन्होंने 65 रन बनाए, उनके बाद कुलदीप यादव के 19 और हार्दिक पांड्या के 10 रन सर्वाधिक थे। इसके बाद 19 रन तक 2 विकेट खोने के बाद श्रीलंका ने ओपुल थरंगा के 49, एंजेलो मैथ्यूज के नाबाद 25 और निरोशन डिक्विला के नाबाद 26 रन की मदद से 20.4 ओवर में 3 विकेट पर 114 रन बनाकर 7 विकेट से जीत हासिल की। मैच के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए खराब था, लेकिन ये हार टीम के लिए आंखें खोलने वाली साबित होगी।
टुडे वॉज नॉट द आइडियल डे for all our batters, but hopefully, you know, it's an eye opener for all of us. You know, hopefully, the next few games we can just regroup and come out with a better batting performance.
दोनों टीमों के बीच अगला मुकाबला 13 तारीख को मोहाली में खेला जाएगा. इस मुकाबले में श्रीलंका के सुरंगा लकमल ने 13 रन देकर 4 और नुआन प्रदीप ने 37 रन देकर 2 विकेट हासिल किए. उधर भारत ने कल जर्मनी को भुवनेश्वर में समाप्त हुए हॉकी वर्ल्ड लीग फाइनल में 2-1 से हरा कर तीसरा स्थान हासिल किया. वैसे भारत ने खेल के 21वें मिनट में एसवी सुनील के गोल की मदद से 1-0 की बढ़त हासिल की, लेकिन जर्मनी ने 36वें मिनट में एप्पल मार्क के गोल की मदद से 1-1 की बराबरी हासिल की. अंततः भारत के हरमनप्रीत सिंह ने 54वें मिनट में मिले पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदल कर स्कोर 2-1 करते हुए भारत को जीत की राह दिखाई. और अब समीक्षा, आखिर कब तक होगी दिल्ली की हवा खेलने लायक.
थैंक यू, गुड इवनिंग एवरीवन. आई एम सॉरी फॉर बीइंग वेरी लेट. आई हैव बीन इन माय कार फॉर 2.5 hours, सो आई नो हाउ इट फील्स फॉर पीपल हु गो टू द ऑफिस एवरी डे, हैव टू कम बैक होम. आई फील रियली सॉरी फॉर देम.
भारत के कप्तान विराट कोहली 2.5 घंटे तक कार के जाम में फंसे रहे, और जब वो माफी मांग रहे थे तब उनकी आवाज के साथ ही किसी के खांसने की आवाज शामिल थी. मौका था दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान के 2 स्टैंड का नाम भारत के पूर्व कप्तान और लेग स्पिनर रहे बिशन सिंह बेदी और पूर्व बल्लेबाज मोहिंदर अमरनाथ के नाम रखने का. ये मामला पिछले महीने की 30 तारीख का था. जाहिर है कि विराट कोहली का बयान खुद बताता है कि दिल्ली में ट्रैफिक की क्या हालत है, लेकिन इसके 3 दिन बाद ही जब दिल्ली में ही श्रीलंका और भारत के बीच तीसरा टेस्ट मैच शुरू हुआ तो उसके दूसरे ही दिन लंच से पहले अचानक मैच का समय बदल गया. फील्डिंग कर रहे श्रीलंकाई खिलाड़ी मास्क पहने दिखाई देने लगे तो कुछ खिलाड़ी अंपायर से उलझने लगे. मैच 20 मिनट तक रुका. बाद में साफ हुआ कि श्रीलंकाई खिलाड़ियों को दिल्ली की जहरीली हवा और धुंध से खेलने में दिक्कत हो रही है. मैदान में मौजूद दर्शक श्रीलंकाई खिलाड़ियों की हूटिंग कर रहे थे. कुछ को लगता था कि श्रीलंकाई खिलाड़ी तिहरे शतक की तरफ बढ़ते विराट कोहली को भटकाना चाहते हैं. अगले दिन ये खबर अखबारों और टीवी चैनलों की सुर्खियां बनी. भारत के पूर्व ऑलराउंडर और कभी दिल्ली के लिए खेल चुके मदन लाल ने बताया कि कैसी है दिल्ली की असली हवा.
श्रीलंका की टीम जो है ड्रामा कर रही थी, बट स्मोक तो हम डिनाई नहीं कर सकते हैं. आप जब सारा दिन खेल के जाते हैं होटल में तो आपका जो चेस्ट है या नोज है या ये सब चीजें ना आपको तंग करती हैं. जो फैक्ट्स है उनको आप हटा नहीं सकते. बाकी हमारी जो आम जनता है वो भी स्ट्रगल कर रही है.
श्रीलंका ने आवाज उठाई तो मामला गरमाया, और वो भी इतना कि अब दिल्ली को भविष्य में शायद ही जल्दी किसी मैच की मेजबानी मिले. लेकिन इसे भारत की साख पर बड़ा बट्टा मानते हैं क्रिकेट समीक्षक अयाज मेमन.
इससे अच्छा इशारा कुछ नहीं हो सकता है गवर्नमेंट के लिए कि विदेशी टीम जो आती है वो खेलने से इनकार करती है, और ये जो तस्वीरें गई होगी दुनिया भर में ये अच्छे रूप में नहीं बताती है इंडिया को.
रोटेशन पॉलिसी के तहत दिल्ली को मिले मैच को नजर लगी खराब मौसम की. अब दिल्ली की हवा को देखकर भला कौन शायर ये कहेगा, कौन जाए जोक दिल्ली की गलियां छोड़कर.
सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है.
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही,
और इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का. भारत में बजने वाले हैं सुबह के 7. चलते चलते खास खास खबरें एक बार फिर सुन लेते हैं.
बीबीसी समाचार. संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन के यरूशलेम को इसराइल की राजधानी के रूप में मानने के फैसले से इलाके में इसराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति बहाल करने की कोशिशों को धक्का लगेगा. नेपाल में इस महीने हुए संसदीय चुनावों की मतगणना शुरू हो गई है. चुनावी नतीजों में वामपंथी गठबंधन बहुमत की ओर आगे बढ़ रहा है. परमाणु हथियार निरस्त्रीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान आईकैन को वर्ष 2017 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है. कैलिफोर्निया के उत्तर में लॉस एंजेल्स में कई जगहों पर जंगलों में लगी भीषण आग अभी भी बेकाबू है. कीनिया में विपक्ष ने कहा है कि उन्होंने अपने नेता राइला ओडिंगा के वैकल्पिक राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने के समारोह को फिलहाल के लिए रोक दिया है. शपथ ग्रहण के लिए नई तारीखों की घोषणा नहीं की गई है. बीबीसी समाचार.
नमस्कार, भारत में आज इतना ही. मुख्य समाचार सुने आपने मानसी दास से. कार्यक्रम आप तक पहुंचाया शाकिर आलम ने. अगला प्रसारण दिन भर, समय आप जानते हैं भारतीय समय अनुसार 7:30 बजे. फिलहाल संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत. bbchindi.com है आपके साथ।